हरे कृष्ण। भक्त भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। अभी भी हम उसी अध्याय पे हैं और अध्याय का नाम है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। तो हम जानते हैं कि मुनियों को रोका गया और जय विजय भी रोका और फिर भगवान बीच बचाव करने के लिए आए और अब भगवान अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि कई बार भगवान को ब्राह्मण लोगों को भी श्राप लग जाता है तो भगवान को भी डर रहता है क्योंकि मेरे भगवान मेरे भक्त हैं, नाराज न होकर मेरे को श्राप ना दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी वैष्णव की, भगवान उनके लिए कुछ भी कर सकते, अपने हाथों को भी काट सकते हैं अगर उनके हाथ भगवान की सेवा ना करें या रुक जाए। फिर कह रहे हैं कि मैं तो खाता ही ब्राह्मणों के मुख से, वो अग्नि जो हवन कुंड में है जब उस पर आहुतियां दी जाती हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा मुंह है, वो अग्निशन जब मुझे डाली जाती है तो मेरा पेट भरता है। कहते बस उससे भी अच्छा तब अच्छा लगता जब बढ़िया बढ़िया घी में फ्राई करके बढ़िया भोजन बनाया जाए गाय के घी में और भक्तों को वैष्णवों को परोसा जाए, तो उससे मैं ज्यादा आनंद लगता क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से मैं खाता हूं। हमें लगता देखो ये ब्राह्मण कितना खा रहा है इनका तो पेट ही नहीं भर रहा है ना, कभी ये मांगते हैं खाने में कभी वो मांगते हैं खाने, तो ब्राह्मण तो बेचारा क्या खाएगा। ब्राह्मण तो भगवान ने आगे किया हुआ है ना कि तुम मेरे आगे खड़े हो जाओ, लगेगा कि तुम खा रहे हो, खा कौन रहे, वास्तव में मैं खा रहा बोल रहे हैं। पिछले शोधन वो भी पढ़ गया, कह रहे कि यज्ञ अग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, मेरे निजी मुख हैं उसमें से एक है यज्ञ कुंड है ना अग्नि यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं, मेरी कृपा से तुष्ट रहते हैं, ऐसे हैं ब्राह्मण। इसलिए भगवान इतना जो है इंडेटेड फील करते हैं ब्राह्मणों के लिए, इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि गाय और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण गौवे और निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर, अपने शरीर का अंग बता दिया ब्राह्मणों को, गायों को और जो निस्सहाय है मेरा अंग क्यों बता दिया? क्योंकि बेचारे कुछ कर नहीं सकते, गायें सदैव मीक मतलब दयनीय अवस्था में रहती है, कभी प्रतिकार नहीं करते। ब्राह्मण लोग बताया जाता है कि वैष्णव ब्राह्मण लोग जो हैं वो उनका कोई भी अपराध कर दे या कोई भी उनको मारे प्रताड़ित करे शाप दे बेचारे सहन कर लेते हैं। क्यों सहन कर लेते हैं? क्योंकि भक्ति करते करते उनकी भगवान से प्रागाढ़ प्रेम उत्पन्न हो चुका है, वो हर चीज में भगवान का हाथ देखते हैं। इसलिए कोई उनको थप्पड़ भी मारे, कोई उनके क्रोधित भी हो, कोई उनका उपहास भी करे, कोई अपमान भी करे, तो वो क्या सोचते हैं तुम? ये तो भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद है, मेरे ही कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे, ये तो भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान कहते हैं भाई तू किस मिट्टी का बना है? एक तो तू मेरा भक्त है, ऊपर से भगवान सोचते कि बोले तो सही जरा किसको मारना है मुझे बताया, नाराज तो हो ही भक्तों की बात हो रही है ब्राह्मणों की, हम जैसे डुप्लीकेट भक्तों की बात नहीं हो रही क्योंकि हम तो हमेशा कहने के किसी को श्राप देते रहते हैं। अच्छा तूने मेरा एक काम नहीं किया क्या तुझे श्राप दे रहा, अच्छा जब तू मेरे अंदर से भाग गया किसी और भक्त विषय में चला गया तेरे को श्राप दे रहा है ना, जहां तू व्यक्ति जो है मेरी बात नहीं करता, मेरे को कलेक्शन नहीं देता कुछ भी, मतलब हम लोग तो इन्हीं बातों से नाराज हो जाते। अच्छा आपने मेरा अपमान कर दिया, वो आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने मुझे उतना मतलब हम लोग छोटी छोटी बातों से मारे तो हम जैसे भक्त तो अभी बेचारे पहली स्टेज के हैं, संघर्षरत स्टेज है हमारे। भगवान कहते ब्राह्मणों की बात, तो वो ब्राह्मण हम सबको बनना है, हमें तो वैष्णव बनना है। ब्राह्मण कर दिए हुए 50% मार्क्स, हमें तो क्या बनना है, वैष्णव बनना, 100% मार्क्स की बात करें। ब्राह्मण क्योंकि धर्म को धारण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, इसलिए भगवान जानते हैं कि यही लोगों की वजह से सारे लोग ऊपर आएंगे, इसलिए वो उनको सम्मान देते हैं कि भैया अरबों खरबों ट्रिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियन सोल में से छुटकारा खाकर या मेरे से जुदा होकर इस संसार में आ गए, तो मैं जाता हूं लीला करता हूं, एक आधे असुर को मारता हूं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग सराहनीय मेरी सराहना करते हैं, जो ऐसे करते हैं वो मेरे भक्त बन जाते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने नहीं सुना, तमोगुण में है रजोगुण, उनका क्या होगा, वो तो मेरी भक्ति में नहीं आएंगी। और मैं बार बार अवतार लेके आता रहूं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे, फिर चले गए, अभी तो आए थे आप, अभी तो गए थे, ये क्या चक्कर लगा रखा है, या तो इससे अच्छा वहीं रह लो आप। होता है ना घरों में भी ऐसे, जब पतिदेव जाते हैं सेवा करने के लिए, क्लास लेने के लिए, या फिर सेवा मिल जाए और लेट आए तो पत्नियां क्या बोलती, आप वहीं रह लो, दिमाग खराब किया हुआ। जगन्नाथ गुरु में भी ऐसे होते, जगन्नाथ जी बाहर जाते हैं लक्ष्मी दरवाजे बंद कर देती है, देखती जैसे आप वहीं रहो, है ना, इतने टाइम के लिए बोला था इतना टाइम लगा लिया। तो ये खैर माताओं का स्वभाव है, क्योंकि उनको श्रीमद् भागवत में कहा है कि उनको संरक्षण चाहिए, तो ये उनकी नेचर में है, हमें संरक्षण दो। वो बात अलग है कि आजकल के लोग, आजकल की माताएं संरक्षण नहीं चाहती, वो कहती हमारा बराबर का हक है, तुम क्या हमें संरक्षण दोगे, आप जितना कमाते हो उससे 15,000 ज्यादा मैं कमाती हूं, मैं तुम्हें संरक्षण दूंगी। कलयुग आ गया है, कलयुग में पहले तो बोलते थे कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सारे शूद्र हैं, संस्कारात भवेत द्विज, संस्कारों से द्विज बनता है, वेद पाठात भवेत मित्र, वेद पढ़ेगा तो मित्र कहलाएगा, और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को कृष्ण को जानता है अपने को जानता तो ब्राह्मण कहलाएगा। तो पहले गुणों से बता रहे कि गुणों से पता चलता था कि कौन क्या है। आजकल स्त्री और पुरुष में भी गुणों से अगर देखा जाए कि कौन स्त्री और कौन पुरुष है तो पता चलेंगे, आधे तो आधी स्त्रियां भी क्या है, पुरुष का ही रोल कर रही है ना, और आधे पुरुष भी स्त्रियों का रोल कर रहे हैं। तो भगवान जानते हैं कि यही तो मेरे अंग हैं ब्राह्मण लोग, जो अन्य लोगों को मेरे धाम में लेकर आएंगे, तो इसलिए ब्राह्मणों को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। और कह रहे हैं मेरी, आज कह रहे हैं मेरी माया, कौन सी वाली माया, दो माया बनी, एक अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति को रूप दिया भगवान ने श्रीमती राधा रानी का, और वो तीन तरह से भगवान की सेवा करती है, संदनी शक्ति, समृत शक्ति और हलादनी शक्ति। संदनी शक्ति है भगवान की जो शाश्वतता को बरकरार रखती है, स्पिरिचुअल प्लेनेट, हमेशा 16 साल के रहते हैं भगवान, बढ़ते नहीं है, तो भगवान को एटर्नल शाश्वत रखती है, ये संदनी शक्ति का कार्य है। भाई मेरे अंदर जैसे शक्ति है, मैं योगा प्राणायाम करता हूं तो मान लीजिए मैं थोड़ी देर यंग रहता हूं, मेरे अंदर बुद्धि भी है, मैं ज्ञान भी है मेरे अंदर, और मेरे को एंजॉय करना है, आनंद लेना है, मैं कैसे कैसे आनंद लूंगा ये मेरे को मालूम है, अंदर सारी चीजें मालूम है ना। तो भगवान ने, मैं तो अपनी इन तीनों चीजों को बाहर नहीं निकाल सकता और कोई रूप नहीं दे सकता, सब कुछ मेरे अंदर, लेकिन भगवान ने क्या किया, इन तीनों चीजों को, इन तीनों तरह की वृत्तियों को बाहर निकाल दिया अपने शरीर से, अंतरंग अंदर की चीज है ना, अंतरंग उसको बाहर निकाल दिया और एक फॉर्म दे दिया, फीमेल फॉर्म, वो कौन है? श्रीमती राधा। और ये श्रीमती राधा रानी अब भगवान की तीन तरह से क्या करती हैं? सेवा करती हैं। हम प्रणाम करके जो उम्र को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन जो संधिनी शक्ति है वो भगवान को हमेशा ही बरकरार रखती है शाश्वत। और जो संवित शक्ति है वो ज्ञान शक्ति है, चित्त शक्ति भगवान की, जो भगवान का ज्ञान बरकरार रखती है हमेशा। भगवान को पता नहीं भगवान है ना, पूर्ण ज्ञान है। पूरे संसार में कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव आए, ऋषि मुनि आए, उन्होंने भगवान को खूब ग्लोरीफाई किया, खूब शास्त्र में लिखा है। जब उनका ग्लोरिफिकेशन पढ़ते हैं, जब उनके रियलाइजेशन पढ़ते हैं भगवान को लेकर, तो पता चलता है तो वही है जो भगवत गीता में लिखा है। तो सदा रियलाइजेशन वही है, तो फिर भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, टॉप मोस्ट नॉलेज। तो ये संवित शक्ति है। और हलादिनी शक्ति जो भगवान को आनंद देती है या आनंद में रखती है भगवान, तो वह है वो भी हलादिनी शक्ति। तो ये तीनों शक्तियां श्रीमती राधा रानी की। तो राधा रानी जो है हलादिनी शक्ति के द्वारा अलग अलग मानसिकताओं के द्वारा लाकर गोपियों का विस्तार करकर, मंजरियों के रूप में विस्तार करकर, लक्ष्मियों के रूप में विस्तार करकर किसकी सेवा करती है? कृष्ण की। तो इनको बोलते हैं योग माया, एक दूसरा नाम योग माया भी है, एक महामाया। महामाया है जब भगवान कृष्ण अन्य अवतार लेते हैं ना, विष्णु रूप में, नारायण रूप में, वराह रूप में, तो यही राधा रानी, यही गोपियां लक्ष्मी के रूप में आए, नारायण के साथ लक्ष्मी, विष्णु के साथ लक्ष्मी। और जब यही विष्णु देखते हैं कि भाई अब प्रकृति बढ़ानी है, फौज बढ़ानी है, सृष्टि करनी है, तो यही विष्णु शिव के रूप में आ जाते हैं, अपने पांच गुणों को कम कर देते हैं, शिव के रूप में 55 गुणों को। और जो ये योग माया है, ये महामाया के रूप में, दुर्गा के रूप में, प्रकृति के रूप में शिव जी का तन करते हैं, शिव जी। तो फिर प्रकृति रूप दृष्टि में, तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड के मूल, इसलिए भी कई बार हम शिव को बोलते हैं। अब जो अन्य देवताओं की रचना होती है, तो यही दुर्गा अपना और विस्तार करती है। रुद्र 11 रूप में अवतार लेते और दुर्गा भी 11 रूप में, जैसे मुख्य 9 बताते हैं ना। और फिर अन्य जो अवतार देवता होते हैं, फिर वही लक्ष्मी और वही दुर्गा अन्य अवतारों में देवताओं की भार्या बनकर प्रकट होती है। तो ये बहिरंग शक्ति है जो संसार को चला रही है, और जो अंतरंग शक्ति है वह गोलोक धाम में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की मेंटेनर, उन्हीं की सब, राधा रानी की सब एक्सटेंशन है, चाहे वो गोपियां हो, मंजरियां हो, यही राधा रानी मथुरा में गोपियों का भी स्वरूप ग्रहण करती हैं, जहां कृष्ण बालक संचालन देती हैं, यही राधा रानी रुक्मिणी सत्यभामा जानवा जानवी जामवती सॉरी इन रूपों में विस्तार करती हैं भगवान को स्वकीय भाव का आस्वादन कराने में, पति पत्नी का खेल। 16108 रानी के रूप में, तो ये बड़ा गहरा तत्व है राधा रानी माया का तत्व। तो भगवान को उनकी लीलाओं में आस्वादन कराने के लिए ये योग माया क्या करती है? क्योंकि सारी शक्ति इनके पास है। तो भगवान को चीजें भुलाना भी नहीं करता, वैसे हमेशा संवित शक्ति है अंदर, तो इसलिए संवित शक्ति वगैरह आने के बाद भी इसका कंट्रोल। तो जब कृष्ण को कोई लीला का आस्वादन करना होता है तो ये योग माया भुला देती है कृष्ण को कि आप क्या हो, भगवान। और जो भक्त हैं उनको भी भुला देती है कि ये भगवान है, तब जाके लीला संपन्न हो पाती है। और कब याद दिलाना है वो याद दिला, नहीं तो सारे के सारे थाली लाकर पूजा ही करते रहेंगे भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, यही करते रहेंगे। तो उनको भी बुला दिया और भगवान को बुला दिया। भगवान कहते हैं मुझे गेम खिलाओ अपने साथ, मां बुलाती है कि आज कलेवा कर लो, टाइम हो गया, पापा बुला रहे। कहते भाई मेरी बारी तो होगी, 5 ओवर खेलिए, अब आपकी बारी, मैं जा रहा हूं। सारे बच्चे कहते ये क्या मतलब है गाना, अपनी बारी आई तो खेल लिया, अब बॉलिंग की बारी आई, फील्डिंग की बारी आई तो बेटा हमेशा ऐसे करते रहते, अब ये बार तो खिलाएंगे। तो कान्हा मां को बोलता है, मां मैं नहीं आऊंगा, मेरे को मेरे दोस्त मेरे से रूठ जाएंगे, खेलेंगे तो फिर बॉलिंग कर। भगवान के साथ झूठा इधर कबड्डी, उनके साथ गेम खेलना, तो ये गेम में तो खेल ही नहीं सकते। अगर मालूम पड़ जाए भगवान है का मालूम पड़ता है तो संकट आता है, संकट आता है, लोग ट्राई ट्राई करते हैं और फिर लगता रहे नहीं हमारे बीच में जो गाना है ना वो ही क्या है, भगवान वही है। तो काना हमारी रक्षा कर, काना कहते हैं वो भी डर रहे होते हैं, फिर कहते हैं नहीं मैं तो कर सकता हूं रक्षा, फिर हमारी रक्षा कर। तो ये है योग माया का काम, भगवान की लीलाओं को और आस्वाद्य बनाना, और माधुर्य में बनाना, और कृष्ण को आनंद देना। कितनी वैरायटी से दिया जा सकता है, उतने एक्सटेंशन करना, कितनी तरह से हमारा मन हमसे बोलते हैं, कितनी इच्छाएं करता है समुद्र में आने वाली लहरों के समान। तो क्या श्रीमती राधा रानी वैरायटी नहीं सोच सकती कि कितनी तरह से भगवान को सेवक कितने कर लेंगे, 10 बार 15 बार नहीं, जो अन्य मित्र डिजायर जीव कर सकता है और बता सकते लहरें नहीं गिनी जा सकती, तो फिर राधा रानी कर सकती। क्यों बोला जाता है था कि भाई राधा रानी ने आज तक जितने तरह का भोजन बनाया ना वो कभी रिपीट नहीं किया, सबसे सृष्टि के प्रारंभ से, कौन सी वाली सृष्टि, भौतिक सृष्टि तो आती जाती रहती है, जब से श्री राधा और कृष्ण एग्जिस्टेंस में आए हैं, कब आए थे कोई डेट नहीं, कोई डेट नहीं, तब से श्रीमती राधा रानी जो चूल्हा चौका करती हैं, मतलब कृष्ण के लिए जो भोजन बनाती हैं वो आइटम रिपीट नहीं हुई करती। और हमारे घरों में क्या शिकायत है, तुम रोज वही खाना बना देती, रोज वही दाल, रोज वही, तुम्हें तोरी के अलावा कुछ मिलता नहीं बाजार में। हम लोग लिमिटेड हैं, लिमिटेड बुद्धि के साथ, लिमिटेड शरीर के साथ, इसलिए हमसे गलतियां होती है लिमिटेशन। लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी ऐसी की बात, तो यह है भगवान की योग माया, यह है आध्यात्मिक जगत का। और जब यहां पर प्रकट होते हैं तो यहां पर भी लीलाएं करते हैं, अद्भुत लीलाएं, छोटे से बालक बनकर वामन अवतार में आ गए अपने भक्त का मान मर्दन करने के लिए। क्योंकि जब कभी भी हमें कोई पूजा जो पोस्ट मिलती है, कोई अधिकार मिलता है, कोई दायित्व मिलता है, एक्चुअली सभी अधिकारों को और पोस्ट को दायित्व बोला जाता है। दायित्व मतलब लायबिलिटी, यू हैव टू बी अकाउंटेबल, तो जिम्मेवारी समझ के किया जाता है। तो जिम्मेवारी में है कि सेवा अच्छी हो, उस जिम्मेवारी में है कि मैं संतुष्ट हूं, उस जिम्मेवारी में है कि सब लोग जो मेरे सेवा के अंतर्गत आएंगे वो भी संतुष्ट रहे। लेकिन जैसे ही कोई पद मिलता है, जैसे ही कोई अधिकार प्राप्त होता है, अभी किसी भी स्तर का हो सकता है, किसी भी स्तर का। मान लीजिए एक गार्ड की सेवा है, आपने बोल दिया गार्ड को आई एम एम्पावरिंग यू, दिस इज योर एरिया, यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी देयर ओनली, एंड योर ड्यूटी इज टू किसी को आने मत देना, सबको ये बोलना, कितना करना। जैसे ही उस गार्ड को भी सेवा मिल जाती है ना, जो कि सबसे छोटी सेवा कह सकते हैं, उसको भी लगता है मेरे पास अधिकार है, मैं किसी को भी रोक सकता हूं, किसी से भी पूछ सकता हूं। एक पियून नौकर मान लीजिए गेट के घर के बाहर खड़ा होता है, ऑफिस के बाहर खड़ा हो, उसके बाद क्या अधिकार दिया मालिक ने कि किसी को भी ऐसे मत आने देना मेरा, और सारे के सारे लोग बाहर आके किसके पांव पड़ रहे होते, और पियून को भी लगता है यार मैं कुछ तो हूं, पावर तो मेरे पास नहीं है। इसलिए जब सरकारी ऑफिस में जाते हैं कलर कहकर सर काम नहीं हो पाएगा आप, कहते क्यों, कहते हैं वैसे सब बिजी, कहते साहब करो ना प्लीज कुछ नहीं करो, कहते पूछना पड़ेगा, कहते पूछना क्या पूछना है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छा तो कुछ खर्चा पानी तो लगेगा ना, आप जब टाइम निकालेंगे आपके लिए, हाँ तो कितना, अगर पूछ के आ जाओ तब उसकी फाइल, हाँ हाँ बहुत काम है, चलो फिर भी कर देंगे 10,000, सुनो भैया 15,000 रुपये लगे, 10 तो हो गया उनका और 5 मेरा, मना कराया हूं तुम्हारे काम से, कुछ मान नहीं रहे, ऊपर से फाइल पूरी तैयार करनी, तैयार करके भी टेबल पर रखनी, ठीक है जी ये पकड़ो 10 उनका 5 आप, अब तो करो, कहते भैया फाइल टेबल तक आएगी क्या, कौन ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा जी, कहते वो जो पियून खड़ा है उसको बोलो वो निकालेगा फाइल, उसको मालूम है काम होगा, जी साहब यार जब जल्दी फाइल निकालो, बॉस ने बोल दिया, कहते अभी टाइम नहीं है मेरे, अभी लंच टाइम हो गया है, उसके बाद आऊंगा और अभी 4 फाइलें और निकाल ली है, 5 भी आपके निकालना, कहते यार बॉस ने बोल दिया, 10 दे दिए उसको, 5 उसको दे दिए, अब तो करो काम, कहते नहीं साहब सबको दे दिया हमें भूल गए, कहते अच्छा क्या करना होगा, फाइल निकालनी है, जब निकले कि नहीं काम कर जाके तो साहब 500 रुपये तो भूलते गए, ठीक है सर ये तो 500 रुपये निकालो, फिर फाइल निकल गई, फाइल में काम कर लिया, फाइल आगे बढ़ गई, 10,000 मिलने के बाद कुछ दिखता नहीं है, टाइम एंड हो गए, फाइल वापस बाहर आई, सर काम हो गया, अंदर कहते फाइल जो है उस स्टेनो की टेबल पर दे दो, अच्छा स्टेनो क्या करेंगे, सर 40,000 बस इतना काम है, सर क्या बात कर रहे हो, फाइल हो गई थी आपने, मैं तो नहीं कर सकती टाइप होगी, मैं तो कल जा रही हूं ना कर लाऊ, कहते नहीं भैया मुझे हर चाहिए फाइल, कहते हैं सुनो भाई स्टैंड में टाइप करना है कुछ तो करना पड़ेगा, अच्छा मैम आप बताइए इतनी जल्दी कर दो, मेरे तो काम बहुत है, फिर भी मैम ये पकड़ो ना 1,000 रुपया, हाँ ठीक है, छाँ 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 टिक 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 फाइल का ऑर्डर हो गया, अब स्टैंप लगाने वाला भी होता है, सर स्टैंप लगा देना पेज टेबल, तो स्टैंप लगाने वाला गल साहब सारा काम करवा लिया, स्टैंप वाले को कुछ नहीं दोगे, अगर तुझे काम करो ऑर्डर लेके जैसे बाहर जाता तो बाहर एक और पियून खड़ा है कि साहब आपको पानी पिलाया था मैं तो था पानी पिलाया ले तू और तू भी बोल ऑर्डर लेके जैसे बाहर आ रहे हैं लिफ्ट वाले ने कहा काम हो गया हाँ सब कुछ करो लड्डू करके बच्चों को मिठाई खिला लिफ्ट लोग भी लोग पार्किंग में मिलता है सर ये पर्ची आपकी हाँ कितने रुपये 30 रुपये ठीक है साहब फिर लोगे नहीं ऊपर रखेंगे, हमारा तो इतनी चलता है, पकड़ भाई तुम्हें 20-50 रुपए होता है। तो ऐसा करके सारे काम होते, जिसके पास जो अधिकार हो जाए वो टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जब तक मेरे पांव नहीं पड़ोगे, जब तक तुम मुझे गिड़गिड़ाओगे नहीं, जब तक तुम मुझे कुछ खाना पूर्ति नहीं करोगे, जब तक तुम बटरिंग नहीं करोगे, जब तक कुछ सूखा प्रसाद नहीं दोगे, तब तक चलेगा नहीं। दो तरह का प्रसाद होगा, एक गीला प्रसाद, एक सूखा प्रसाद। कई बार लोग भक्त लोग जाते हैं घरों में प्रोग्राम करने के लिए, तो भक्त लोग कहते हैं आइए बिठाते हैं सबको, तो ब्राह्मण है जी भगवान उनके मुंह से खाते हैं जी खिलाते हैं, सब कुछ बढ़िया हो गया। और हो गया प्रोविजन जी, हो गया तब संतुष्ट हैं जी। गीला प्रसाद हो गया, गीला प्रसाद हो गया मतलब कहते जो खिलाया वो गीला प्रसाद है, उसका हाँ गीला, कहते सूखा रह गया, कहते सूखा मतलब, सूखा का मतलब हमने आपका प्रसाद खाया है आपके कर्मों के लिए, तुझे दांत घिसाई का भी पैसा देना पड़ता है, उसको सूखा प्रसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने अपने दांत घिसे हैं, इसलिए घिसे आपके कर्मों के फलों को हमने खाया और हमसे फिर आगे कुछ तो करना पड़ता, मतलब वो ब्राह्मण जो है उसको भी कुछ चाहिए है ना, क्यों मैंने दांत घिसाई की। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही कल्चर ही क्या करप्टेड है, क्यों करप्टेड है, जैसे ही अधिकार मिल जाता है कि बस अब हाथ जोड़कर आ जाए और मैं क्या काम निकलवा लूं, अधिकार प्राप्त हो गया, मेरी सुननी पड़ेगी, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, जाओ तुम उस टीम के हो, तुम इस पार्टी के हो, नहीं करता। और इस तरह से हम फिर जीवों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति क्या कर बैठते हैं, अपराध कर बैठे। और इस प्रकार के अपराध होने से जब हम नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, शुद्ध नाम, नाम बिल्कुल शुद्ध है, और गारंटी है, शास्त्रों की गारंटी है कि जो इस नाम को लेगा, निरअपराध नाम ले ले पाए प्रेम, जो व्यक्ति निरअपराध नाम लेगा उसके हृदय में प्रेम आएगा ही आएगा, बाबा गारंटी, अश्रु निकलेंगे नहीं तो शास्त्र झूठ कह रहे हैं क्या, नहीं तो कहां प्रॉब्लम है, ना अश्रु आ रहे हैं, ना भगवान से विरह महसूस हो रहा है, और ना ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है, हृदय में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तो क्या कारण है। तो पता चलता है नाम तो तीन प्रकार के लिया जाता है, नाम अभाग, नाम अपराध और शुद्ध नाम। तो नाम अभाग वो स्थिति है कि जब पता चल जाता है कि ये हरि नाम में शक्ति है, चेंजेस आ रहे हैं, नियम हो रहे हैं, और नाम अभाग के बाद तुरंत कहां आ जाते हैं, नाम अपराध, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये बोला, ये प्रसाद ले गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने चोरी कर ली, इसने आधा इधर रखा आधा जेब में डाल लिया, इसके पास अपनी पोस्ट आई, अधिकार आया, तो इसने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, किसके नाम पर, कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, ईगो की कर रहा हूं, भगवान की नहीं कर रहा। अगर भगवान की सेवा करते तो भगवान तो कह रहे हैं भैया मैं अपने हाथ काट दूं अगर कोई मेरे से नाराज हो जाए, मैं अपने भक्तों के चरणों की रज लेता हूं, तो कौन से वाले भक्तों की रज, जो सेल्फलेस है वो सदैव भगवान के नाम सुन रहे। और दूसरी बात, जो भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों को सम्मान देते, ये इस स्टेज पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिस समाज से हम आए हैं उसमें तो हम लोगों को आसपास लोगों की गलतियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि हमेशा से बॉस बनने का अधिकार, बॉस बनने की चेतना थी कि नहीं भैया इससे अच्छा हूं मैं, इससे अच्छा हूं, चलिए मैं देखने में अच्छा है बट बुद्धि में मैं इससे अच्छा हूं, चलिए बुद्धि में अच्छा हूं लेकिन क्वालिफिकेशन मेरी अच्छी है, चलो क्वालिफिकेशन अच्छी है बट इसकी सैलरी अच्छी है तो चलो कोई बात नहीं, मेरा घर बड़ा है, चलो इस व्यक्ति के पास गाड़ी बड़ी है तो कोई बात नहीं, मेरे पास बीवी सुंदर है, चलो इसकी अगर बीवी सुंदर है तो मेरे पास बच्चे मेरे कहना मानने वाले हैं, अगर मेरे कहना मानने वाले बच्चे हैं, उसके कहना मानने वाले बच्चे हैं तो मेरे घर में जो सोफा है वो अच्छा है ना, अगर इसका सोफा अच्छा है तो मेरा पलंग अच्छा है, अगर इसका पलंग अच्छा है तो मेरी ड्रेस ज्यादा चमक रही है, और अगर ज्यादा अच्छी चमक रही है तो इसका चश्मा अच्छा है तो उससे महंगा मेरा चश्मा है, अगर इसका महंगा है तो मेरा वो वाला है जो आजकल ट्रेंड में है। अरे बाबा कहां जाएंगे, इतनी तरह की वैरायटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं मन करता है। तो ये बॉस बॉसियत जो है ना, प्रभुत्व जमाना, ये हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, इसलिए हम किसी को सुनते नहीं, इसलिए हम लोग संसार में रहे, इसलिए नाम जब जाप करते हैं तो नाम अपराध नहीं होते हैं। और फिर हम संग भी ऐसे लोगों का ही करते हैं, समस्या ये नहीं कि पहले तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनसे अपराध हो रहा है, और अगर पता चल गया तो फिर पहले तो बताए कौन, हम तो गलती करते ही नहीं, मैंने साफ साफ मुंह पर बोल दिया, साफ साफ मुंह पर तो जय और विजय ने भी बोल दिया, चार कुमारों को कहां से आए हो कहां जा रहे हो, साफ साफ ने तो बोला था दे दिया शाप पहुंच गए नीचे, नहीं मैं तो साफ साफ बोल दिया, वो बात अलग है कि हम इतने शुद्ध नहीं है, इसलिए जो हमारे अपराध है ना वो उतनी तगड़ी श्रेणी के नहीं लगते, छोटी छोटी श्रेणी के लगते, सारे न्यूफाइट स्टेज में तो एक दूसरे को शाप दें कुंठित हो कुछ भी करें तो कहीं ना कहीं नुकसान तो कर रहा है, तो वो शुद्ध नाम नहीं होगा, पीएचडी की डिग्री नहीं मिलेगी फिफ्थ क्लास का लेकर, क्योंकि स्टेज ही हुआ। तो इस प्रकार हम लोग जहां पर भी हमारे को अधिकार प्राप्त होता है, पोस्ट पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, तो हम झुकना नहीं चाहते, और आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन धाम जाने का जो दरवाजा है ना वो छोटा है, धाम बहुत बड़ा है, दरवाजा बड़ा छोटा है, झुककर ही जाना पड़ेगा, एंट्री उसी की है जो झुककर जाएगा, नहीं आप बोलोगे यहां तो गंडे तो वहां झुक जाऊंगा, यहां ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी झुकने, तृणा कपी सुनी चेन तरो रपी सही सुनना, अमान ना मान देने कीर्तनीय सदा, ये चार चीजें ऐसी हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर भक्त को अपने गले में बांध कर रखना चाहिए, ताबीज बना ताकि स्मरण होता रहे, क्या कि मुझे सदैव तृण से भी अधिक विनम्र नीच मानना अपने आप, जब मैं तृण से भी अधिक नीच मानूंगा अपने को तो मेरे अंदर कभी गुमान नहीं आएगा, गुरूर नहीं होगा, घमंड नहीं आएगा, ईगो नहीं रहेगा, एक घास के तड़क घास का तिनका उसको कोई भी रौंद के चला जाए कभी प्रतिकार नहीं करता, उस तरह की चेतना होनी चाहिए डिवोटी। कल रात को मुझे एक मैसेज आया, किसी ने बोला कि क्या करें जब कोई इंस्टिगेट करे, जब कोई गुस्सा चढ़ाए प्रवोक करे हमें, तब क्या करना चाहिए, तो हमने बताया कि हमारी एक्सपेक्टेशन थे इतनी सारी, हम चाहते कि सब लोग हमें अच्छा ही बोलें, सब लोग हमारे अंदर अच्छा ही देखें, अगर नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूं फिर अच्छा बोले, सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए मैं कितना अच्छा हूं, सबको मेरे तमीज से बात करनी चाहिए, सबको बड़ी विनम्रता से मेरे पास आना चाहिए, मैं तो प्रेसिडेंट हूं, सबको मेरे पास हाथ जोड़ के आना चाहिए, नहीं कोई नहीं आएगा, मान के चलो कोई नमस्कार करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं देगा, क्योंकि हम तृण के समान है, नहीं है हमारे अंदर कोई रूप, कोई दे दे तो उसको आप नहीं, उसको भगवान को ऑफर कीजिए, गुरु को ऑफर कीजिए, कोई ना दे तो वो अपना नुकसान तो कर ही रहे, और अगर आपने ये सोच ली कि उसने नहीं दिया तो आप अपना नुकसान कर रहे, तो तृण से भी अधिक नीच मानना, कोई कुछ भी बोल दे, किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग कर ले, किसी भी प्रकार का क्रोध कर दे, अवमानना कर दे, मारने का प्रयास करे, विनम्र रहकर मतलब भगवान से नीच रहकर अपने आपको भगवान के प्रति सरेंडर कीजिए, जब तक प्राण शरीर से ना निकलते तब तो हाँ, तो आप सोचो कि शायद अगर कोई हमारा पड़ोसी है, कोई जानकार है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, या कोई तंग कर रहा है, गलत गलत शब्दों का प्रयोग, उस स्थान को छोड़ दो। एक दूसरी बात, विनम्रता से अपनी बात रखो। तीसरी बात, उसके अधिकारी को बताओ, उसके और अधिक ऊपर जा सकते हैं। प्रयास तो करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि भाई पिछले जन्म में मैं तेरे को कितना प्रताड़ित किया, मैंने तेरे साथ कितना क्या कर दिया कि तू तो इस जन्म में मेरी बैंड बजाई है तुमने। तो ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है आपके साथ, ये तो आप किसी के साथ करके आए। जैसे आज मान लीजिए कोई आपको कर रहा है, या आप किसी को खूब प्रताड़ना दे रहे, देते हैं ना लोग आसपास, देखते ना समाज में, बच्चे को मारना, पीटना, थप्पड़ मारना, काम करवाना, ये करना, खूब कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी अंतरात्मा बड़ी परेशान रहती है कि मैं छोड़ भी नहीं सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्या करूं। अगला जन्म होता है दोनों का, अगले जन्म में आप बड़े विनम्र भक्त बन के आते, विनम्र व्यक्ति, और वही जो जिसको आपने खूब बैंड बजाई थी उसको वो आपकी बीवी बना देगा, या तो पति बना देगा, या आपका पड़ोसी बना देगा। हाँ, अब आ बेटा, या आपका अधिकारी बना देगा जो आपको प्रताड़ना ही देता रहेगा, ये कर तू, ये कर तेरे को आगे दे, ताकि मानसिक और शारीरिक कष्ट मिलते रहे। कितने कितने पिछले जन्म में 4,345 बार आपने किसी का मन दुखाया, तो इस बार आपको वो कितनी बार करेगा? कम से कम उतना तो करेगी। तो जब कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, कोई दुखी कर रहा है, पहले तो यही समझो कि भैया मेरे ही कर्म थे, मैं पता नहीं क्या करके आया उसके साथ, जो पीछे नहीं छोड़ रहा है ना, एक बात। दूसरी बात, मैं जो कर आया था 4,000, तो ये रोज जो कर रहा है मेरा अकाउंट कम कर रहा है, नहीं तो अगर मैं मर गया अभी तो जो 2-3 हजार बचेंगे वो अगले जन्म फिर आना पड़ेगा। तो भैया धन्यवाद, तू और गालियां देकर, और पीछे कर, और प्रताड़ित कर, और मानसिक तनाव दे, और मुझे आगे बढ़ने से रोक, तो किसका अकाउंट कम हो रहा है? तो क्या करना चाहिए सामने वाले व्यक्ति का? धन्यवाद करना चाहिए उसका, अरे वाह, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने दर्द उतार दिया, और सॉरी मैं पिछले दिन बताने क्या क्या करके आया आपके साथ। और अगर मान लीजिए इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कहीं प्रचार के काम में, भक्ति में, मेरी भावभक्ति में, मेरी साधना में कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है, तो फिर उस स्थान को छोड़े, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास करें, क्योंकि भक्ति से तो फिर कर्म ठीक हो जाते हैं ना। तो अगर कुछ ऐसी चीज हो रही है, कोई अपराध कर रहा है, तो उसकी भक्ति बचाने के लिए भी अपने को उससे अपराध ना हो तो अपने को दूर कर लेना चाहिए, अधिकारी के पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो इसलिए हमने बताया कि अधिकार जहां भी मिल जाता है तो हर व्यक्ति क्या हो जाता है? अब अधिकारी जो है कि अगर मुझे लगता है मुझे 5 श्लोक आते हैं, मेरा अधिकार है, मुझे सुनो आप, अधिकार के साथ ही क्या आ गया, मतलब जैसे आपके पास योग्यता है उसके साथ अधिकार भी आ गए। मान लो कि सीनियर है, उसको 2 आते हैं, उसको गिफ्ट दे दिया, उनको 2 श्लोक उसको भी आते हैं, उसको खाने के लिए कुछ दे दिया, मुझे 5 आते वैसे पूछ ही नहीं रहे, तो क्यों गुस्सा आ रहा है? ईगो आ गई। क्यों आ गई ईगो? क्योंकि 5 लोग याद किए हैं, तो जो 5 लोग याद किए थे वो हम लोगों को एक अधिकार दे दिया उसने कि मेरे से सुनो, मुझे ग्लोरीफाई करो, मुझे पूछो, मेरे अंदर योग्यता है, तुम सुन ही नहीं रहे, इसलिए नहीं सुनते क्योंकि लोगों को ये पता चल जाएगा सबसे अच्छा मैं हूं। क्योंकि अगर आपको पता चल, आपको बुला दिया आइए इनसे भी सुन लीजिए, 5 मुझे 5 सुना दिए, अब सब किसकी जय जयकार करेंगे? मेरी जय जयकार। तो जब जय जयकार होगा तो फिर अधिकार अहंकार और बढ़ेगा। तो ये सब चीजें समझने वाली, ये सटल चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें हैं जो हमें मानसिक रूप में तनाव देती हैं, परेशान करती हैं, उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। तो इसलिए अपने को हल्का रखना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का तृणादपि, अब तृण छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको कोई घमंड नहीं, ट्रक के नीचे आए चाहे कोई पैर से रोंदे, वो आपस में ये बात नहीं करते, देखा तुम ट्रक के नीचे पिसा गया है और मैं एक आदमी के पैर के नीचे, तेरे को ज्यादा दर्द हुआ? कहते हैं नहीं, कुछ भी हो क्या करना है, अपने को नीच ही मानना है। और फिर वृक्ष से भी अधिक सहनशील, वृक्ष हमेशा देता रहता है, फल देता है, फूल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, क्या नहीं देता, और हम क्या देते हैं तो उसको हम प्रताड़ित करते हैं, काटते हैं। वृक्ष क्या बोलता है, कुछ वैष्णव भी ऐसे होते हैं, देते रहते हैं, उनको सब कुछ भी हो तो सहन करते हैं। तृष्णता विप्रलब्धा शब्दा शिद्धा हतो, चाहे वो तिरस्कार कर दे वैष्णव का या फिर उसको अपशब्द बोल दे, अवमानना कर दे, अपराध कर दे, हाथ उठा दे, शापित कर दे या मारने का प्रयास करे, तो भी भक्त क्या करता है, ना तत्व प्रतिकुर्वती, वो प्रतिकार नहीं करता कि तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं तुम्हारे साथ ये किया, प्रतिकार नहीं करता, इसको वैष्णव। तो तृण से भी अधिक नीच मान ली, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो गए। संसार में तो लोग बोलेंगे देखो डरपोक है, संसार में बोलेंगे शरीर के अंदर इतनी योग्यता नहीं है, संसार में लोग बोल सकते हैं तुम क्या हो गया, तुम दिमाग खराब है, लेकिन भक्त क्योंकि भक्ति करता है जानता है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्णा, और भगवान अपने कौन से भक्तों से प्रसन्न होते हैं, जो पूर्णतः भगवान पर समर्पित होते हैं। और उसको पता है कि मैं क्योंकि भगवान को समर्पित हूं तो भगवान अपने आप ही बदला ले लेंगे उससे, और निश्चित रूप से जब भगवान के भक्तों को कोई छेड़ता है कुछ करता है तो भगवान बदला लेते हैं, डायरेक्टली लेंगे तो इनडायरेक्ट तो लेंगे लेंगे, कोई ना कोई ऐसे तनाव देंगे, ऐसे कष्ट देंगे कि दुखी रहेंगे। लेकिन जो वैष्णव है ना, वो पता क्या बोलता है, नहीं नहीं भगवान ये जो अगर मेरे प्रति कुछ कर भी रहे ना, हो सकता है मेरे अपराध हो, मेरे ही पिछले जन्म के कर्म हो, आप इसको भी माफ कर दो, हे भगवान आप इसको कोई कष्ट मत दे, बताइए ऐसी चेतना हो। इसलिए भगवान कहते हैं भाई तू किस मिट्टी का बना है, मैं तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हमेशा तैयार हूं, चक्र से लोगों की गर्दन उड़ाने के लिए और गदा से उनकी सर पे ठां करने के लिए, तुम बोलो तो सही, तुम नहीं भी बोलोगे तो मैं करूंगा। लेकिन भक्त क्या कहते हैं, नहीं नहीं आज उनको माफ कर दो, इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, और कष्ट किसको दे रहे हैं, शरीर को तो दे रहे हैं या मेरे मन को दे रहे हैं, हम शरीर मन तो भौतिक है ना भगवान, क्या दिक्कत क्या है, इनको कष्ट ना हो, अगर इनको आप कष्ट दोगे तो ये बेचारे कहां, इनका क्या जीवन होगा, कहां नरक में जाएंगे। तो भक्त कहते हैं नहीं नहीं इनको माफ कर दो, ओहो भगवान जैसे सुनते हैं कि ये कह रहे हैं इसको भी माफ कर दो, भगवान का हृदय ओ दब जाता है, भगवान का हृदय अपने भक्त के प्रति ओर इंडेटेड और प्रेम बढ़ जाता है अपने भक्त के प्रति। इसलिए वो कहते हैं मैं तुम्हारे चरणों की रख लेना चाहता हूं, नहीं मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकता, तुमने कंट्रोल कर लिया, मैं तो नहीं देख सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई मेरे चरणों से निकलने वाला जल शिवजी भी अपने सर पर लेते हैं, देखो अपने को भी पवित्र करते हैं और वो जल इस संसार के पापियों को भी पवित्र करते हैं। और जो ब्राह्मण हैं, जो गाय हैं, जो लोग इनकी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों का मैं चरण रज लेता हूं। क्यों लेता हूं वो हमने बता दिया, क्योंकि इतने विनम्र हैं। अमान ही ना मान देने कीर्तनीय सदा हरि, अपना मान की चिंता ही नहीं करते और दूसरे को सदा मान देते हैं कि नहीं आप, आपकी वजह से हुआ, आपने किया, या फिर भगवान को देते हैं सारा क्रेडिट। और हम सर्टिफिकेट ढूंढते रहते हैं अपना, यार मेरा नाम ही नहीं आया, मैंने उस सेवा की थी। तो अपने मान की इच्छा ना करके सदैव दूसरे को मान देना, तो इसलिए भगवान ऐसे भक्तों के द्वारा बिक जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं इतना ही नहीं कि मेरे भक्त, इसलिए मेरे भक्तों का गुणगान जब होता है या उनको भी जो लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, मैं उनका भी उद्धार कर देता हूं। तो इसलिए भक्तों को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें वो लोग किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में वैष्णवों के प्रति अपने मुख अपनी वाणी अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं। हर चीज क्योंकि वाणी और हाथ से मतलब ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनसे ही तो सारी समस्या शुरू होती है, यहीं से अपराध होते हैं। मन से भी होते हैं लेकिन भक्त लोग मन से होने वाले अपराधों को क्योंकि उसका पाप नहीं लगता है, लेकिन वैष्णवों के प्रति करेंगे तो दिक्कत होती है। इसलिए सभी भक्तों में अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। और उन्हें चाहिए कि वो पूजनीय जो भक्त हैं जिनकी चरण रज भगवान के लेते हैं उनको सदैव उसी दृष्टि से देखें और पूरा उनको पूजने का ही वो रखें हृदय पूजनीय। तो उससे क्या होगा, शायद हम लोग तो इतनी अच्छी शुद्ध भक्ति ना कर पाए, शायद रुचि भाव और भक्ति के स्टेज पर ना पहुंच पाए, लेकिन अगर भक्तों की सेवा कर देना तो भगवान उससे प्रसन्न। और सेवा का मतलब भी समझना, हमने बताया कि संसार में हम भोक्ता मेंटालिटी है हमारी, तो इसलिए हम लोग किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते, तो हमें चाहिए कि हम लोग किसी न किसी भक्त के संरक्षण में रहकर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें, उनसे प्रश्न करें, उनसे सेवा मांगे और आगे बढ़ते जाए अधिक से अधिक सेवा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रभुत्व जमाने का या बॉस बनने का जो मानसिकता थी वो दास रूप में बदल जाएगी, कि हम दास हैं, दास थे और दास ही रहेंगे। इसलिए हमारे नामों के पीछे क्या लगता है, दास याद दिलाने। तो इसलिए हम लोग उस दासत्व को समझें और सदैव दास वाली चेतना में रहें, क्योंकि इस पोजीशन से जैसे ही ऊपर उठेंगे मानसिक रूप से या दोस्त पूजक तो तुरंत हमसे क्या हो जाएंगे, अपराध शुरू हो जाएंगे। और वैष्णव सदाचार का सदैव पालन करें, उससे हम उनसे अपराध होने से बचते हैं। ठीक है, ग्रंथ राशि में भाग बनती तो प्रश्न ये जिज्ञा सकते। हाँ जी, आध्यात्मिक जगत में शक्ति जब अपना एक्सपांशन करती है पौर्णमासी और तो उसको भी तीन तरह से बताया गया। एक योग माया तो वो थी जो निकली जिसको हम सूर्योदय भी बोलते हैं, और आखिर दूसरा एक्सपेंशन और भी है जो योग माया हो मतलब जो भगवान की अंतरंग शक्ति, तो वो अंतरंग शक्ति का एक भाग है जो सुभद्र रूप है। नहीं, भाव की स्थिति में हम लोग जब निरपराध नाम लेंगे तो अपने पहुंच भी जाएंगे ना, निरपराध नाम लेंगे तो प्रेम तक जाएंगे, प्रेम भी हो जाएगा। और अपनी साधना करके ये सब करके फिर जैसे हमने बताया कि चैतन्य चरिता में जो टॉप मोस्ट ग्रंथ है उसमें केवल भक्तों का आपस में डीलिंग ही सिखाया गया, तो इसलिए हम लोगों को भक्तों की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव सेवा तीन चीजें बोले ना, तीन महाबल कौन कौन से, नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। नाम में रुचि होगी तो हम लोग सच में लोगों के ऊपर दया कर पाएंगे, उनको भगवान से जोड़ पाएंगे, और साथ साथ वैष्णवों की सेवा। तो हमारे आचार्य बोलते हैं ये जो तीन है ये बहुत शक्तिशाली साधन है किसी के लिए, हरि नाम लेता रहे, श्रवण इत्यादि कीर्तन करता रहे, तो नाम के प्रति भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न करे, साथ ही साथ जीवों के प्रति दया करने का भाव है, सभी जीवों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। अब इन जीवों में वो सब भी आ जाते हैं जिनके साथ हम सेवा करते हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमसे जूनियर हैं, है ना, या हमारे स्टाफ के हैं, वो भी जीव है कि नहीं, तो उनके साथ भी सही तरह से व्यवहार करना, ताकि ना उनसे अपराध हो ना हमसे अपराध, उन परिस्थितियों से बचे। और वैष्णव सेवा, महाप्रभु कहते हैं जिसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया वो वैष्णव है। तो इस तरह से सभी वैष्णव, इसके ऊपर वाले वैष्णव, तो सबका हमें प्रयास करना चाहिए कि सेवा कर सकते, अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग योग्यता के अनुसार की जाती है, जैसे बताया गया उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारियों को किस प्रकार सेवा करनी है, उनकी सेवा करनी है उनके ऊपर कृपा करते, कृपोपेक्ष, जैसे मध्यम अधिकारी करते हैं, ईश्वर तद अधीनेश बाली शेष दुष्ट, और मतलब एक मिनट, मतलब सेवा करना मतलब वैष्णव की सेवा करते रहेंगे, और जो वैष्णव नहीं है बनने का प्रयास कर रहे हैं या जो इस रीति के लोग हैं जो अपराध करते हैं उनसे क्या करना, उनकी उपेक्षा करना, उनसे थोड़ा दूर रहना, उनसे अलग। मटेरियल लाइफ को तो हम बताते ही है ना कि जैसे सांप हुंकारना नहीं छोड़ता, लाला जी की कथा गई और बताइए, तो हमें वो मटेरियल लोगों को मटेरियल हिसाब से भी अंदर से वैष्णव भी रहें लेकिन ऊपर से उनको दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, गुस्सा भी करना पड़ सकता है लेकिन नॉलेज करें कि ऐसे गुस्सा ना कर दें, ऐसे अपशब्द ना बोल दें, या ऐसा प्रहार ना कर दें किसी पर कि कल को सारी माला 64 माला जेल में कर दें किसी, उसने ऐसा कर दिया तो मैं कोई करना ही पड़ा, नहीं कोई भी हो सकता है, गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है, तो उसका वैष्णव तरीके से इलाज करना। बेशक बाहर से दिखाने में लगेगी कर्मी इलाज, जैसे कई बार हमारे मंदिर में आने वाले लोगों के साथ भी दिक्कत हो जाती है, बाहर से आने वाले लोग, तो हमें भी कोर्ट में जाना पड़ता है, उनके लिए भी एफ आई आर करनी पड़ती है, कोई गलत करता है जब भक्तों के साथ देखने में लगे तो बहुत ही काम है, लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि वो सुधरे, काम को रोके और भगवान का पैसा वापस आए और भगवान की सेवा में, तो उसके पीछे उद्देश्य होते, ठीक है। सहन हाँ, ये देखना पड़ेगा, भगवान तो भगवान है, हमको पूछना पड़ेगा अपने लिए कितना सहन है, इसलिए हमने बोला संरक्षण में आके करें। और भगवान ने उसको मारा तो गलतियां करने पर, मार तो शुरू में ही देते लेकिन माता को वचन दे दिया, तो जब ये एक दिन में सो करेगा तब मारो, तो फिर उसको मारना पड़ा, वचन दिया। लेकिन हमने बताया भगवान के भक्त जो है वो भी ज्यादा वो होते भी नहीं, तो इसलिए भगवान कहते रहे बाबा हम तो मिलते भी चार गर्म आ गए, इसलिए कई बार प्रथा जैसे जब भगवान कह रहे हैं मैं ब्राह्मणों के मुख से ही खाता हूं, ब्राह्मणों को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, और आज के समाज में देखते हैं, आज के परिवेश में देखते हैं कि ब्राह्मण सारे नियमों को तोड़े, तो हमें भी बताया शास्त्र में कि कर्म से नहीं, जन्म से नहीं कर्म से देखना चाहिए ब्राह्मण को, ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए 50 करोड़ जिन्हें भी पहना हुए और सारे उनके जैसे काम कर रहे हैं, वो ब्राह्मण नहीं, उनसे दूरी बनाकर मिनिमम 6 क्वालिटी है, वो करता नहीं करता, जैसे यज्ञ करना कराना, भोजन करना, यहां लेना लेना युद्ध करना कराना। हाँ समाज में जहां लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कुछ समाज करी तो बात तो कहां बोलते हैं किस तरह के लोग हैं उनके बीच में रहना चाहिए भी कि नहीं एक बात। हाँ तो वो आसपास के लोग जो हैं उनको भी थोड़ा सा रिलेशन बनाना ही मेंटेन रखना ही पड़ता है। तो वो हरे कृष्णा तक रखो, प्रसाद देने तक रखो, किताब बांटने तक रखो, कुछ भगवत चर्चा तक रखो और दो तीन मिनट के अगर ऊपर नीचे बात करनी ही पड़ेगी तो इतना ठीक है। उसके बाद तुरंत बोलो कि आपको काम है, वो लोग भी समझ जाएंगे कि ज्यादा रुकते नहीं टिकते नहीं। अगर तीन कहानी आपने सुनाई तो पांच लोग सुनाएंगे तो फिर वो हमारा टाइम उसमें निकल जाएगा। तो इसलिए हमारे आपको अपना समय भक्तों के बीच में बिताना चाहिए, भक्तों से बात करो, फोन करो, कुछ भी करो, ठीक है। ग्रंथ राशि में भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद गीता है जोर के मन में।